नमस्कार भारत, आज है 2 अक्टूबर, दिन रविवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। पाकिस्तान ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे का मांगा सबूत, मीडिया को कराया नियंत्रण रेखा का दौरा।
इतनी लाशें इस इलाके में बिखरी हुई, उन्होंने अगर जो क्लेम किया है तो वो किधर गई सारी, वो लाशें किधर गई, वो जनाजे किधर गए, कोई बंदे उठा के वो साथ ले गए, वो उन्होंने पेश क्यों नहीं किया।
कावेरी का पानी छोड़ने के अदालत के आदेश को ना मानने के अपने रुख पर कर्नाटक कायम, सोमवार को विधानमंडल की बैठक। न्यूज़मेकर्स में मिलेगा तनिष्ठा चैटर्जी से, जो अपने सांवले रंग का मजाक उड़ाए जाने पर टीवी शो छोड़कर चली गई थी।
ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये तो उनका डीप प्रेजुडिस है ना, कि उनको ये लगता है कि किसी के स्किन टोन पे कमेंट करना मजाक है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत ने नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के बाद शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने पत्रकारों को नियंत्रण रेखा का दौरा करवाया है। पाकिस्तानी सेना के सूचना विभाग ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने भारत के दावों का फिर से खंडन करते हुए कहा है कि भारत अपने दावों के सबूत पेश करे। उन्होंने कहा कि भारतीय गोलीबारी के जवाब में की गई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारतीय सैनिक हताहत भी हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी भारतीय सेना छुपा रही है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। खाड़ी के देशों ने सीरिया के अलेप्पो शहर में जारी बमबारी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। अलेप्पो में हो रही बमबारी में रोजाना सैकड़ों नागरिक मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के प्रतिनिधित्व वाली गल्फ सहयोग परिषद की ये अपील अलेप्पो के सबसे बड़े अस्पताल पर हमले के चंद घंटों बाद जारी की गई है। इस अस्पताल पर तीसरी बार हमला हुआ है। विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष विराम टूटने के बाद से ही रूस और सीरिया की वायुसेना अलेप्पो के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर भारी बमबारी कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले संगठन मेडिसिन सान फ्रंटियर यानी MSF के ऑपरेशंस मैनेजर पाब्लो ब्लांको बताते हैं कि अलेप्पो में हालात बेहद खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा, अलेप्पो में घायलों का इलाज करने लायक सिर्फ एक ही अस्पताल रह गया है। शहर के मौजूदा हालात में ये त्रासदी है। हम कुछ सप्ताह पहले संघर्ष विराम के दौरान इस अस्पताल तक चिकित्सीय सामग्री पहुंचा पाए थे। अब जब बीते दिनों राहत काफिले पर भी हमला हो गया है, हमारे लिए अलेप्पो के लोगों की मदद कर पाना नामुमकिन हो गया है। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारत पर्यावरण को लेकर हुए पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने का ऐलान करेगा। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीते सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में कहा था कि भारत भी पेरिस समझौते का हिस्सा होगा। पेरिस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन कम करना है, जिसके लिए देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी होगी। ब्रिटानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि वो अगले साल संसद में नया कानून पारित करवाकर ब्रिटेन को फिर से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाएंगी। द संडे टाइम्स को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए लागू कानून को रद्द कर दिया जाएगा और सत्ता और अधिकार देश के संस्थानों को सौंप दिए जाएंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचार में सुना, पाकिस्तान ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे पर सवाल उठाया है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने पत्रकारों को नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके का दौरा कराया और उन्हें बताया कि भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मनगढ़ंत, बेबुनियाद, सफ़ेद झूठ और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तानी सेना के सूचना विभाग ISPR के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का क्षेत्र आम लोगों, मीडिया और संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के लिए खुला हुआ है और जैसा दावा भारत कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहा है तो सबूत पेश करे।
सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और वो पाकिस्तान के इलाके में घुसे और उन्होंने नंबर ऑफ लॉन्च पैड थे जो इल्ज़ाम वो लगा रहे थे उनको उन्होंने तबाह किया और वापस चले गए। तो वो कहाँ पे थे, उन्होंने कोई लोकेशन बताई, उन्होंने बताया कि वो कैंप्स कहाँ थे, उसमें वो मुख्तलिफ तादाद लोगों की बताते रहे। तो अगर इतने लोगों को वो इस साइड पर आए मार के गए तो ये पॉपुलेशन सारी इधर है, किसी बंदे को पता नहीं चला। इतनी लाशें इस इलाके में बिखरी हुई, उन्होंने अगर जो क्लेम किया तो वो किधर गई सारी, वो लाशें किधर गई, वो जनाजे किधर गए, कोई बंदे उठा के वो साथ ले गए, वो उन्होंने पेश क्यों नहीं किए। दूसरी बात आ जाए, अभी ये बॉर्डर की आप देख रहे हैं कन्फिग्रेशन, वो कह रहे हैं कभी वो क्लेम ये करते हैं 1 से 3 किलोमीटर डीप गए, कभी वो ये क्लेम करते हैं कि वो 10 किलोमीटर डीप गए। आपके सामने ये एलओसी है, आप बताएं इस एलओसी से, इन इस रगेड टेरेन के अंदर से, जो 5 घंटे में वो कह रहे हैं कि हमारे ट्रूप्स 5 घंटे में उन्होंने सारा ये ऑपरेशन किया, क्या ये सारा कुछ मुमकिन है कि वो आए भी और इतने आराम से वापस भी चले गए? तो बंदों को उन्होंने फूलों के साथ मारा, कोई फायर की आवाज नहीं है, किसी चीज की आवाज ही नहीं आई। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद और सफेद झूठ है।
पत्रकारों से बात कर रहे थे पाकिस्तानी सेना के सूचना विभाग ISPR के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। उधर भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान की हालत की तुलना सर्जरी के बाद बेहोशी की हालत वाले मरीज से की है। नियंत्रण रेखा के पार चरमपंथी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद यह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। सुनिए देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पीठासीन गांव में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया। ये इलाका बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। इस नाते राज्य बीजेपी के सभी नेता इस मौके पर मौजूद थे। मनोहर पर्रिकर ने अनावरण कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री का एक तरह से ये पहला सार्वजनिक बयान भी था। उन्होंने सैनिकों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा कि सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत उस मरीज की तरह हो गई है जिसे सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और होश आने पर उसे पता नहीं चल पाता कि उसकी सर्जरी हुई है।
एनेस्थीसिया देता है, भूल देता है, भूल बोलता है। भूल देने के कारण जो उसकी ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है।
मनोहर पर्रिकर यही नहीं रुके, अपने तीखे बयानों के लिए चर्चित रक्षा मंत्री ने सेना की तुलना हनुमान से कर डाली और कहा कि सेना को अब जाकर अपनी सामर्थ्य का अंदाजा ठीक उस तरह हो गया है जैसे हिंदू धार्मिक आख्यान रामायण में जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान को लंका पार जाने की अपनी उड़ान शक्ति का अंदाजा हो गया था। और तो और पर्रिकर खुद को जामवंत बताना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार से चरमपंथी हमलों पर चुप नहीं बैठा रहेगा, ये कार्रवाई इसी बात का संदेश थी।
अपमान सहेंगे नहीं और इसके आगे कतई नहीं। आप हमें अगर पीड़ा देना चाहते हैं तो इस देश की सेना, इस देश के लोग सभी आपको भी पीड़ा देने में समर्थ है।
ये भी गौर करने वाली बात है कि जिस अमर सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का अनावरण करने केंद्रीय रक्षा मंत्री पौड़ी पहुंचे थे, उनके बारे में उनके पास कहने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। आजादी की लड़ाई में चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली की अगुवाई में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के पेशावर में तैनात जवानों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले निहत्ते पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली खुली बगावत थी। शिव जोशी, BBC देहरादून।
भारत की ओर से नियंत्रण रेखा के पार जाकर सैन्य कार्रवाई करने के दावों के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। युद्ध विराम का उल्लंघन कर नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हो रही है और साथ ही युद्ध या सैन्य कार्रवाइयों की आशंका के कारण लोग अपने घर और खेतों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इन सबके बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि इसके बाद अब क्या होना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत की कोशिश शुरू करनी चाहिए। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने सीताराम येचुरी से पूछा कि क्या बातचीत की कोशिश का ये सही वक्त है।
हिंदुस्तान को अपनी हिफाजत के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो भी कदम उठाई वो उठाए गए। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पठानकोट और यूवी में जो हुआ ये हमले अब आगे को इस तरीके के नहीं होंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि आज ये होने के बाद अब हम चाहेंगे कि ये जो तनाव जो है दोनों मुल्कों के बीच में ये और आगे ना बढ़े। अगर इस तनाव को और आगे ना बढ़ाए इसके लिए कारण ये है कि दोनों के पास परमाणु हथियार है और ऑलरेडी हिंदुस्तान में कई सारे गांव से लोगों को जो है हटा दिया गया, इवैक्यूएशन हो गई और वहां पर जब फसल खड़ी है और 2 साल के सूखे के बाद अब फसल हो रही है और उस फसल को छोड़कर लोगों को वहां से हटाया गया है। इस तरीके की तनाव की परिस्थिति को आगे और ना बढ़े इसके लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। तो आखिरकार इसका समाधान तो यही होगा कि ये बातचीत के आधार पर ही हो सकता है और बातचीत का सिलसिला तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अपने इस एक्शन के बाद इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशन के वो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं, अभी भी ये बातचीत चल रहा है और इसके आगे इस समस्या को सुलझाने के लिए ये वार्तालाप, और ये वार्तालाप का मतलब हम ये कह रहे हैं कि कूटनीति और राजनीतिक कदम भारत उठाए।
इस समय जिस तरह की बातचीत हो रही है, सीमाओं पर जिस तरह का तनाव दिख रहा है, चौकसी है, उसमें एक डर का माहौल दोनों तरफ बनता दिख रहा है, तो आपको लगता है कि इस वक्त कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि ये भरोसा बने कि हम कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं?
देखिए, अगर ये माहौल बनाना है तो जरूरी है कि नीतिक और राजनीतिक कदमे की पहलकदमी तो करें और ये हम समझते हैं कि हिंदुस्तान करें ये पहलकदमी पाकिस्तान के साथ, और ये पहलकदमी करेंगे तो ये भरोसा लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर ये भरोसा आएगा कि ये जो है कोई ऐसे जंग की तरफ ये दोनों मुल्क नहीं जा रहे हैं। हम वही कह रहे हैं हमारी सरकार से, बातचीत होगा, कब होगा वो अलग बात है लेकिन बातचीत का दौरा तो अभी भी चल रहा है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। लेकिन हम कह रहे हैं कि कूटनीतिक और आप राजनीतिक ये इनिशिएटिव्स को आप लीजिएगा
राजनेताओं की तरफ से भी, लेकिन इस वक्त जो बयान आ रहे हैं वो ज्यादातर थोड़े से कहना चाहिए कि लोगों को उत्तेजित करने वाले ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि राजनेताओं को भी थोड़ा सा अपना टोन डाउन करने की जरूरत है?
देखिए, राजनेताओं को और हम सबको और पूरे दोनों मुल्कों को ये समझना चाहिए कि दोनों के पास परमाणु हथियार है। तनाव बढ़ाते हुए, उत्तेजिता बढ़ाते हुए ये ऐसी नौबत ना आए कि इस तरीके से जंग की माहौल पैदा हो। उसे बर्बादी के अलावा और कोई चारा किसी के पास नहीं है। हम नहीं समझते कि ये कोई सोल्यूशन है।
ये थे सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। उधर पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रस्ताव का चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर विरोध किया है। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में ये दूसरी बार है जब चीन ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध को टलवाया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठनों और आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 1267 समिति द्वारा मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के प्रस्ताव पर चीन ने तकनीकी रोक लगाते हुए फैसला और 6 महीने के लिए टलवा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने एक बयान जारी कर कहा, चीन का हमेशा ये मानना रहा है कि 1267 प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंध लगाने के लिए निष्पक्षता और व्यावसायिकता के साथ ठोस सबूतों के आधार पर और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सर्वसम्मति से फैसले लिए जाएं। मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के बाकी 14 सदस्य पहले ही हामी भर चुके हैं। मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने संबंधी समिति के प्रस्ताव को इससे पहले भी चीन ने इस वर्ष मार्च महीने में 6 महीनों के लिए तकनीकी तौर पर रुकवाया था और उसकी मियाद सोमवार को समाप्त हो रही थी। भारत ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति को आवेदन दिया था। इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस भी हैं। 2 दिन पहले ही अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सूजन राइस ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से फोन पर बात की थी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट के अनुसार उस बातचीत के दौरान सूजन राइस ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर भी भारत के साथ मजबूत साझेदारी पर कटिबद्धता जताई थी। भारत मसूद अजहर को पठानकोट हमलों का जिम्मेदार मानता है। चीन सुरक्षा परिषद का वीटोधारी स्थायी सदस्य है और माना जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के मकसद से ये कदम उठाया है, लेकिन चीन का एक आतंकी को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने से रोकने का फैसला ऐसे समय में आया है कि जब मंगलवार को ही बीजिंग में भारत और चीन की आतंकवाद से लड़ने के मामले में साझेदारी के लिए एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी। अगर मसूद अजहर पर आतंकी होने के कारण प्रतिबंध लगता है तो उसके विदेश जाने पर रोक लग जाएगी और उसकी संपत्तियां भी सील हो जाएंगी। फिलहाल चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने की प्रक्रिया अब कुछ महीनों के लिए टल गई है। सन 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने जैश ए मोहम्मद को चरमपंथी गतिविधियों और अलकायदा से संबंधों के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब वक्त है दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा हमारे साथ तमाम अखबारों को लेकर मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज अखबार भारत पाकिस्तान, जो तनाव की खबरें हमने अभी सुनी उसके बारे में?
जी, भारतीय सीमा पर जो गांव खाली कराए जा रहे हैं वो खबर हिंदी अखबारों में प्रमुखता से है। अमर उजाला लिखता है, बॉर्डर से सटे 100 गांव से 40,000 लोग शिफ्ट। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, सीमा पर टैंकों की तैनाती। दैनिक भास्कर ने एक तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें किसान सैनिकों की मौजूदगी में बॉर्डर से के आसपास के खेतों में खेती कर रहे हैं। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल दलवीर सिंह ने उन कमांडोज से मुलाकात की है जिन्होंने कथित सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। साथ ही वो जो है नॉर्दर्न कमांड के उधमपुर हेडक्वार्टर भी पहुंचे हैं। एक खबर है, उड़ी में जो हमला हुआ था उस समय जो तत्कालीन ब्रिगेडियर थे उनको हटा दिया गया है, ये जनसत्ता ने खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। वहीं चीन ने जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी का पानी भारत के लिए रोका है उस खबर पर द संडे टाइम्स लिखता है, पाक्स फ्रेंड चाइना रिड्यूसेस वाटर फ्लो टू ब्रह्मपुत्र, यानी पाकिस्तान के दोस्त चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोका। एक और खबर है, इसमें कराची के बाद अब लाहौर के ऊपर से भी जो व्यावसायिक उड़ानें हैं उनकी ऊंचाई पर रोक लगाई है पाकिस्तान ने। विमान अब जो व्यावसायिक उड़ानें हैं वो 29,000 फीट से नीचे उड़ान नहीं भर सकेंगे और इसका सीधा सीधा असर भारत आने वाली उड़ानों पर होगा। जो उड़ानें भारत से खाड़ी और ख़ासकर पश्चिमी देश जाती हैं उनमें समय ज़्यादा लग सकता है और माना जा रहा है कि ये इसी पर असर डालने के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चीन ने एक बार फिर चरमपंथी मसूद अजहर को जो है चरमपंथी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर वीटो किया है। ये खबर आज के लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर
अभी चर्चा की
जी। साथ ही जो पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव हैं वहां से जो लोग निकाले जा रहे हैं उनसे जुड़ी अलग अलग खबरें अखबारों में हैं, उनका हाल बयां कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक एक परिवार अपने साथ भैंसे भी ले आया लेकिन किसी ने भी उनको जगह नहीं दी अपने यहाँ रखने के लिए, तो काफ़ी परेशानी जो लोगों को हो रही है उससे जुड़ी खबरें अखबारों में हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कर्नाटक ने एक बार फिर कहा है कि वो कावेरी का पानी छोड़ने के अदालत के आदेश को ना मानने के अपने रुख पर कायम है क्योंकि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है। अब राज्य सरकार सोमवार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन किए जाने के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार ने सोमवार को विधानसभा की बैठक बुलाने का भी फैसला लिया है जिसमें अदालत के 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश पर फैसला लिया जाएगा। सुनिए बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कावेरी विवाद पर कर्नाटका रुख नहीं बदल रहा है। कर्नाटका ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए आदेश का पालन नहीं कर सकती है, खासकर कोर्ट का वो आदेश जिसमें केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड स्थापित करना चाहिए। कर्नाटक का कहना है कि प्रबंधन बोर्ड का मामला कोर्ट के 3 जजों के बेंच के सामने है और उसकी अंतिम सुनवाई 18 अक्टूबर को है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा,
देयर वाज नो प्रेयर आइदर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टेट और बाय द कर्नाटक स्टेट एंड आल्सो नोटिसेस वर नॉट इशूड।
कोर्ट ने जब इस मामले में आदेश दिया तो इस मामले में केरला और पुडुचेरी को भी नोटिस जारी करना चाहिए था, इसीलिए हम मानते हैं कि यह एक दोषपूर्ण आदेश है। अगर इस बोर्ड को बनाना ही था तो प्रक्रिया यह होती है कि इस मामले को संसद के सामने रखना चाहिए, यह कानूनी तरीका है और इसीलिए हम समीक्षा याचिका सोमवार को दर्ज करने वाले हैं। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि विधानमंडल की बैठक सोमवार को ही बुलवाई गई है। विधानमंडल ये निर्णय लेगी कि क्या तमिलनाडु को 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ना या नहीं, तो क्या कर्नाटका सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर रही है, खासकर जब अदालत ने ये कहा है कि ये कर्नाटका के पास आखिरी मौका है। इस पर सिद्धरामय्य ने कहा, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं की है, हम जानबूझकर आदेश की अवहेलना नहीं की है, हम पर विधानमंडल का निर्णय भी बाध्यकारी है। ये थे सिद्धरामय्य के शब्द। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अचानक कल सुबह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा,
आई डोंट नो हाउ द टू मेंबर्स बेंच कैन डिसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन।
जब कावेरी प्रबंधन बोर्ड का मामले में तीन जजों की बेंच के सामने है, तो ये कैसे हो सकता है कि दो जजों की बेंच इस पर आदेश दें, खासकर जब इस बेंच के सामने याचिका में सिर्फ सांबा फसल के लिए पानी छोड़ने का मामला लाया गया है। हम कौन होते हैं न्यायतंत्र को सवाल पूछने के लिए? हम एक साधारण व्यक्ति हैं, इसीलिए हम प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। ये थे देवेगौड़ा के शब्द। इसी बीच देर शाम केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश दिया कि वो इस मामले को देख रहे हैं। इसके बाद देवेगौड़ा ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका के अपना रुख ना बदलने पर क्या फैसला लेगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आज बीबीसी न्यूज मेकर्स में मिली फिल्म अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी से। उन्होंने अपने सांवले रंग का मजाक उड़ाने के लिए कॉमेडी नाइट्स बचाओ नामक टीवी शो की आलोचना की है। 35 साल की तनिष्ठा चटर्जी इस टीवी शो में अपनी फिल्म पास्ट के प्रमोशन के लिए फिल्म के निर्देशक लीना यादव, अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ पहुंची थीं, लेकिन जब उनके सांवले रंग को लेकर मजाक किया गया तो वो शो बीच में ही छोड़कर चली गईं। उनसे बातचीत की बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा ने।
ये जो हुआ तनिष्ठा जी आपके साथ जब आप एक रोस्ट में गईं, कैसे हुआ एक बार आप हमें बताएंगी?
पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि ये अगर मेरे साथ होता तो मैं तो हंसती, मेरा मजाक उड़ाता तो मैं हंसती, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हुआ है। ये तो उनका डीप प्रेजुडिस है ना, कि उनको ये लगता है कि किसी के स्किन टोन पे कमेंट करना मजाक है। व्हेन यू थिंक दैट सेइंग, आपने बहुत जामुन खाया होगा बचपन से, जामुन आपको बहुत पसंद था, इफ यू थिंक दैट इज फनी दैट शोज योर प्रेजुडिस, इट डजंट ऑफेंड मी।
ये एक पहले से ही चल रही मानसिकता है कि किस तरह से आप एक चीज को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, आपको वो चीज थोड़ी सी अजीब लगी?
थोड़ी सी अजीब नहीं, मुझे ये चीज लगी कि आप एक इतने बड़े कॉमेडी शो में आपको इससे बढ़िया कोई कॉमिक मोमेंट नहीं मिला मेरे बारे में। हेलो, आपको अगर रोस्ट करना था तो मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में मजाक उड़ा सकते थे, पर आपको एक इतने पॉपुलर कॉमेडी शो में एक डीपली डिस्टर्बिंग प्रेजुडिस चीज जो बहुत कास्टिस्ट भी है, रेसिस्ट भी है, सब कुछ है, वो आपको फनी लगा? मैं इस माइंड सेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये पर्सनल बिल्कुल नहीं है, ये वो माइंड सेट है जो जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ 80% पीपल डार्कर स्किन टोन के हैं, लेकिन आज भी मुझे बैठ के आपके साथ इसके बारे में बात करनी पड़ रही है। ये अभी भी एक इश्यू है, अभी भी यहाँ फेयरनेस क्रीम्स बेची जाती है, अभी भी यहाँ एड्स आते हैं जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि आप अगर गोरे नहीं हो तो आपको काम नहीं मिल सकता है। ये नहीं सिर्फ ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, ये सब वो सब चीजें हैं जहाँ आप एज अ नेशन, आपका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके, आप जैसे दिखते हो उसमें रेशियली आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, ये वो प्रॉब्लम है। ये मुझे ऑफेंड करने की बात नहीं है।
बॉलीवुड में भी क्या ये प्रेवलेंट है?
देखिए, मुझे लगता है कि समाज में जो प्रेवलेंट है, बॉलीवुड इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को हमने हमेशा सेलिब्रेट किया है जो डार्क डस्की स्किन टोन के हैं, क्योंकि शायद यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्टिस्ट हैं जो बाउंड्रीज पुश करते हैं। जैसे महेश भाट साहब ने बहुत बहुत साल पहले, हम लोग बच्चे भी नहीं थे तब, शायद हुए ही नहीं थे, अर्थ करके फिल्म बनाई थी, तो मैंने बहुत बात देखा, उसमें स्मिता पाटिल और शबाना आजमी थे, और स्मिता पाटिल जी को उन्होंने एक बहुत ग्लैमरस रोल दिया था उसमें। तो ऐसा जो है, मतलब ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो हमारे यहाँ पे मतलब हमेशा हैं, और ऑडियंस ने भी उनको सराहा है। तो इट्स नॉट दैट बॉलीवुड हैज, लाइक बॉलीवुड ऑल्सो हैज प्रेजुडिस, बट बट बॉलीवुड आल्सो हैव स्पेस फॉर एवरीबॉडी।
आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ बॉलीवुड में रंग को लेकर, शायद किसी रोल को लेकर, जहां आपको बोला गया हो कि नहीं आप ये रोल नहीं कर सकती क्योंकि आप एक डिफरेंट कलर की हैं, या कुछ भी?
मुझे ऐसा लगता है कि कभी डायरेक्टली कोई कहता नहीं है, लेकिन एक बायस होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब हम मेकअप करने बैठते हैं तो हमसे ये कहा जाता है, ये नंदिता ने भी शेयर किया है मेरे साथ, दैट अगर आप गांव के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो तो ठीक है, आपका रंग ठीक है, लेकिन अगर आप शहर के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो जहां आप पढ़े लिखे हो, थोड़े से मतलब इकोनॉमिकली मोर यू नो बैकग्राउंड से हो, जो थोड़ा एम्पावर्ड है, तो उसमें थोड़ा आप लाइटर मेकअप कर लीजिए। मतलब आप ये जो बायस है हमारी सोसाइटी का, ये बायस है कि अगर आप अपर क्लास या अपर कास्ट के हो तो आप गोरे होंगे, और आप लोअर कास्ट के होंगे तो आप काले होंगे। ये जो बहुत मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग बायसेस है, मेरा प्रोटेस्ट इन सब चीजों से है, उस चीज के बारे में कभी बातचीत करते नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये भी प्रोनाउंस किया है, और बहुत लोगों को ये बहुत खटकेगा, मुझे पता है ये, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका जो बायस है ना वो उस चीज पे भी आता है। हम बहुत सारी चीजों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम लोग अभी भी बहुत फ्यूडल हैं, और ये सारी चीजें उन सब माइंडसेट से आता है।
तनिष्ठा, आपने हमसे बात की और हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी से बात कर रहे थे विदित मेहरा। और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत ने कोलकाता में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे ही दिन न्यूजीलैंड पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली है। कल जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट खोकर केवल 128 रन था। स्टंप के समय विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग 12 और जीतन पटेल 5 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि भारत की पहली पारी 316 रन पर समाप्त हुई थी। न्यूजीलैंड अभी भी 188 रन से पीछे है और उसके 3 विकेट बाकी हैं। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही जब उसके सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम केवल 1 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर LBW हो गए, और जब टीम का स्कोर 18 रन था तब मार्टिन गप्टिल ने भुवनेश्वर कुमार की उछाल लेती गेंद को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी बाजू पर लगती हुई विकेट में समा गई। उन्होंने 13 रन बनाए। इसके बाद हेनरी निकोलस का विकेट भुवनेश्वर कुमार ने उखाड़ा। फिर कप्तान रॉस टेलर और ल्यूक रोंकी के बीच चौथे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हुई। रॉस टेलर 36 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार और ल्यूक रोंकी 35 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। भुवनेश्वर कुमार ने इसके बाद मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी को भी बोल्ड कर पेवेलियन की राह दिखाई। इससे पहले भारत ने विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के नाबाद 54, चेतेश्वर पुजारा के 87 और अजिंक्य रहाणे के 77 रनों की मदद से अपनी पहली पारी में 316 रन बनाए। रिद्धिमान साहा ने माना कि उनकी दूसरे बल्लेबाजों के साथ छोटी छोटी साझेदारियों ने भारत को 316 रन के स्कोर तक पहुंचाया।
हम लोग का वही प्लान टीम मीटिंग में भी वही डिस्कस हुए थे कि जितना हम लोग सुबह पार्टनरशिप पे ध्यान देंगे 10-10, 15-15 रन, और जितना कैरी फॉरवर्ड होगा 270-280 तक सोचे थे, अगर अच्छा जाएंगे तो 300 क्रॉस करेंगे। तो वही हुआ लास्ट में, जड्डू के साथ 40-45 रन का और शमी के साथ 30-40 रन का पार्टनरशिप, वो 10 तक पहुँच गया।
वहीं शतरंज की बिसात पर भारत के विश्वनाथन आनंद 10वें ताल मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के चौथे राउंड में रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक से हार गए।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत के नियंत्रण रेखा पर सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के बाद शनिवार को पाकिस्तान सेना ने पत्रकारों को नियंत्रण रेखा का दौरा करवाकर भारत से सबूत मांगे हैं। खाड़ी के देशों ने सीरिया के अलेप्पो शहर में जारी बमबारी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारत पर्यावरण को लेकर हुए पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने का ऐलान करेगा। ब्रिटानी प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि वो अगले साल संसद में नया कानून पारित करवाकर ब्रिटेन को फिर से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाएंगी। कोलंबिया के विद्रोही गुट फार्क का कहना है कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक करेगा ताकि हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके। और मैक्सिमो के कोलिमा ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट की वजह से सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।